सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरि तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायाबहिर्योद् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानन्द भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। जो ग्रंथ बड़ा ही अनुभवात्मक है, हम जीवन में इन साधनाओं को कैसे अपना सके, इसमें दूसरा प्रकरण चल रहा है जिसका नाम है बोध का प्रकरण, ज्ञान का प्रकरण। तो मैंने अपने आप को असंग निर्लिप्त आत्मा जान लिया, तम कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित हो गए। मैं कुछ करता नहीं, ध्यान देना, मेरी सत्ता से सारे काम हो रहे हैं। रोज मैं बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान देना। हम लोग एक शब्द बहुत गलत बोल देते हैं, ईश्वर की इच्छा से सब हो रहा है, जबकि क्या हो रहा है, ईश्वर की सत्ता से सब हो रहा है। ईश्वर यदि इच्छा करे तो अच्छी अच्छी इच्छा करेगा कि नहीं करेगा, खराब क्यों करेगा। इसी इसी घटनाएं आज हो रही हैं। यदि वो सब ईश्वर की इच्छा ही मान लिया जाए तो बताओ कितना वो हो जाएगा, बताओ। ईश्वर तुम्हारा बड़ा निकृष्ट हो जाएगा, ऐसा तो एक सामान्य आदमी भी नहीं सोच सकता है। ईश्वर ऐसा सोच लेगा क्या? जो घटनाएं हो रही हैं, टीवी और अखबार में रोज पढ़ते ही हो, यदि ईश्वर की इच्छा से इसी घटना हो रही है, बताओ इसका कौन होगा, बताओ जिम्मेदार भी कौन होगा? ईश्वर ही होना चाहिए। ऐसा कर्म तो एक सामान्य आदमी भी नहीं सोच सकता, तो इतना बड़ा एक पशु ही सोच सकता है। वैसे हम तो कुछ पशु भी नहीं सोच सकता, जैसे कर्म हो रहे हैं वैसा कर्म तो कौन नहीं सोच सकता, एक पशु भी नहीं सोचेगा। पशु से भी जो नीचे गिरा हुआ है वही व्यक्ति सोच सकता है। तो ईश्वर की इच्छा नहीं है, ईश्वर की क्या है बोलो भाई? सत्ता, शक्ति वही है, जल वही है। अब उसमें प्याज उगाओ और नीम उगाओ अथवा गन्ना उगाओ, किस पे अधीन है? जहर की खेती कर लो, अफीम की खेती कर लो, है नहीं? अफीम ब्राउन शुगर की खेती होती, क्या होती मैं नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। अफीम उगाओ, ठीक है ना, भांग उगाओ, अथवा उसी में शक्ति देने वाली बादाम उगाओ, एक किस पे अधीन है? आप करो, जिसका जैसा अंतःकरण होता है वैसा वो खेती करता है नहीं करता। लेकिन उसमें बारिश का जल का कोई दोष है क्या, बताओ? तो परमात्मा का कोई दोष है? उस परमात्मा की सत्ता पर जैसे अंतःकरण मिलते हैं वैसा क्रिया वैसा व्यवहार दिखता है। लेकिन वो परमात्मा कर्तित्व भोक्तित्व से रहित है। यदि हमने भी अपने आप को वही मान लिया, चिदाभास न मान करके हमने अपने आप क्या माना, जिसका प्रतिबिंब पड़ा है, चैतन्य जान लिया अपने आप को, तो हम भी कर्तित्व भोक्तित्व से क्या हो गए, मुक्त हो गए। और सबको प्रकाशित करने वाले स्वयं प्रकाश कौन है, आप हैं। स्वयं प्रकाश माने आप दूसरे से नहीं जाने जा सकते हो, बल्कि आप जिसको जानते हो जाना जाता है, लेकिन आपको दूसरा कोई जाने, क्योंकि हमें कभी पूछने की आवश्यकता पड़ती क्या, देखो भाई मैं हूं, मैं तो स्वयं क्या हूं, सिद्ध हूं। हां, दूसरे को जानने के लिए मेरी आवश्यकता पड़ती है, मेरी यहां की आवश्यकता पड़ी तो मैंने क्या कहा, आप हो। कान की आवश्यकता पड़ी तो शब्द की सत्ता सिद्ध होती है। जिह्वा की आवश्यकता पड़ती है तो किसकी सत्ता सिद्ध होती है, रस की सत्ता सिद्ध होती है। त्वग इंद्रिय की आवश्यकता पड़ती है तो किसकी सत्ता सिद्ध होती है, लेकिन अपने को जानने के लिए बताओ कौन सी इंद्रिय चाहिए, अपने को जानने के लिए क्या अपने आप को छू करके देखूंगा क्या, हां मैं हूं, अथवा शीशे में देख करके देखूंगा कि हां मैं हूं, अथवा बताओ कैसे हम अपने आप को जानेंगे कि मैं हूं। भाई दूसरे को जानने के लिए तो आपकी आवश्यकता है, नहीं आपकी आवश्यकता है, संसार में तो पांच ही विषय है ना, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन पांच विषयों को जानने के लिए मेरी आवश्यकता ही नहीं आवश्यकता है, लेकिन ये विषय मेरे अधीन है, मैं जानूंगा तो जाने जा सकते हैं, नहीं पकड़ रहे किसी कोने में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये विषय मेरे अधीन, लेकिन इन विषयों के अधीन मैं नहीं हूं, मैं तो क्या हूं, स्वयं सिद्ध हूं, मैं स्वयं प्रकाश हूं, मुझे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता है ही नहीं, वह आप आत्मरूप हो। लेकिन देखना भाई, एक बार उस आत्मसत्ता को जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम व्यवहार में उस आत्मसत्ता को भूल जाएंगे। एक बार उस सत्ता को जान लो ना, फिर व्यवहार में भी वो सत्ता हमेशा बनी रहेगी। जैसे एक बार हमने जल के स्वरूप को जान लिया, जल शांत स्थिर रहता है कि हिलता जुलता है, देखो जल का स्वभाव हिलना जुलना नहीं है, बाल्टी में कितना भी जल हिला के रख दो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, तो जल का स्वभाव क्या है। एक बार हम शांत जल को जान लिया और फिर उस जल पे फेन आवे, बुदबुदा आवे, तरंगे आवे, तो भी आप जल की सत्ता का वास्तविक ज्ञान रखते हो नहीं रखते। भाई जल की तस्वीर, अभी जिसने शांत जल को न देखा हो, कैसे जल को देखा हो, तरंग वाले जल को देखा हो, तो जल की जब तस्वीर बनाएगा तो कैसे बनाएगा, बोलो भाई, ऐसे जल की तस्वीर बनाएगा, समुद्र में ही जल देखा हो तो जल की तस्वीर कैसे बनाएगा, तरंग वाला जल ऊपर नीचे बनाएगा, और सामान्य व्यक्ति जल की तस्वीर कैसे बनाएगा, कभी तस्वीर बनाई नहीं जल की आप लोगों ने। अरे भाई जाइंग में जाइंग वाले तो बनाते हैं डार्क 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 नीचे नीचे नीचे, वो क्या है ऊपर एक लाइन बनाते हो, ऊपर ऐसे ही से बनाते हो, हाँ, एक सीधी लाइन रहती है, इसके अंदर जल क्या रहता है, एक समतल ही है, शांत ही है, ये तो ऊपर नीचे किसी विक्षेप के कारण, हवा आदि के कारण हो जाता है, प्रेशर के कारण हो जाता है, हवा का कारण प्रेशर है, दबाव के कारण हो जाता है, अन्यथा तो जल का स्वभाव स्वयं क्या है, जल का स्वभाव स्वयं शीतल है, जल कैसा है, गर्मी उसमें जो दिखती है वो कहां से ला दी गई है, अग्नि के संपर्क से वो गर्म हुआ है, अन्यथा जल क्या है स्वयं में शांत है, शीतल है, क्योंकि यदि अग्नि जल का स्वभाव गर्मी होता तो जल को रख देते तो थोड़ी देर बाद वो क्या होता, हमेशा गर्म ही रहता, कभी शांत ठंडा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जिसका जो स्वरूप है ना, वह कैसे भी होवे अपने स्वरूप की तरफ लौटना चाहता है, जल्दी जल्दी हम क्या हो जाए अपने, अग्नि का स्वभाव क्या है, उष्णता, जब भी छुओगे उसमें क्या आएगी, उष्णता ही आएगी, और उष्णता समाप्त हो गई तो अग्नि भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, अग्नि की सत्ता फिर आप नहीं बोल सकते, फिर अग्नि नहीं मिट्टी हो जाएगा, लकड़ी वह क्या बन जाएगी, मिट्टी बन जाएगी, फिर अग्नि नहीं रहेगी। तो कहने का भाव मात्र इतना है कि एक बार उस तत्व को क्या कर लो, जान लो, बस तो जानने का उपाय क्या है? तो बताया है अनेक उपाय हैं। सबको अन्न रूप से उपासना करना, चिंतन करना, ये भी तो है ना। अन्नम हुआ ब्रह्म, अन्न से ऊपर उठे सबको क्या देखना? जल रूप देखना। जल से भी ऊपर उठे तो सबको क्या देखना? अग्नि रूप। पंचाग्नि है ना, वहां सब बादल में कौन कौन अग्नि है, कौन चिंगारी है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, सबको किस रूप में देखा गया? अग्नि रूप में। अग्नि से ऊपर उठे तो क्या आएगा? वायु। वायु माने प्राण उपासना। तो सबको क्या देखना? प्राण रूप देखना। एक क्रम है। अब प्राण से भी ऊपर उठोगे तो आकाश का स्वभाव क्या है, गुण क्या है? शब्द रूप है। तो वाचो रंभंग विकारो नाम ध्येय है। ये शब्द मात्र क्या है? शब्द रूप से उपासना करना है। ये जगत का जितना व्यवहार है किसके अधीन है? शब्द के अधीन है। अब शब्द एक सामान्य शब्द है और एक शब्द कैसा है? ऊपर नीचे शब्द है। कभी नदी बहती है देखा नहीं? देखा आप लोगों ने? नदी सामान्य गति से बह रही हो, कोई हलचल नहीं दिखता है, लेकिन उसी नदी में एक पत्थर पड़ जाए फिर क्या दिखेगा? हलचल, तरंग आ जाएगी नहीं आ जाएगी? फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? शांत। ऐसे एक सामान्य स्वर है। अभी सारी प्रकृति में कौन सा स्वर है? अब उस सामान्य स्वर में हम कहीं किसी को दबाए, किसी को क्या किए, हल्का ऊंचा किए, तो एक विशेष स्वर पैदा हो जाता है। भाई अंदर से तो एक हवा आती है ना, उस हवा को जीभ, होंठ, तालू आदि क्या करते हैं? अरे जब भौंकते हैं वो क्या हारमोनियम, तो एक हवा ही तो जाती है। और उसको क्या करते हैं? इधर वाला बटन दबाएंगे तो धीमा स्वर, बीच वाला मध्यम शायद, और इधर वाला तीव्र स्वर होता नहीं होता? बताओ, एक ही हवा है लेकिन आवाज, वो बटन दबाने से उसके शब्दों में कितना अंतर आ जा रहा बताओ। सारे गम प ध नी सा, कितने शब्द आ रहे हैं बता। लेकिन शब्द एक सामान्य क्या है? सामान्य हो ही आ रहा है, लेकिन उस शब्द को दबाने से विशेष की उत्पत्ति हो रही है। तो हम विशेष में ना जाएं, कहां रहें? सामान्य स्वर में रहें। उस सामान्य स्वर का नाम ही नादानुसंधान करना। सामान्य स्वर को ही क्या बोलते हैं? नाद अनुसंधान करो। तो एक क्षण अथवा आधे क्षण भी आप क्या करते हो? यदि स्वरूप चिंतन करो। स्वरूप चिंतन माने क्या हुआ? विषय चिंतन से मन हट करके अंतर्मुख जैसे ही होता है तो आपको एक स्वर सुनाई देता है, जिस स्वर का नाम क्या है? अनाहत स्वर। क्या है? अनाहत माने बिना किसी आहत के जो स्वर होता है, बिना किसी, जैसे ओम, देखो ओ, अब भी दबा रहे ओ, मुंह कैसा बना रहे हैं? ओ आहत वाला है, म, ये भी अंदर से कंठ से निकल रहा है, एकदम कोई अंत में कोई दबाव नहीं है। तो जो अंत वाला स्वर है उस स्वर का नाम क्या है? अनाहत स्वर। उस अनाहत स्वर का अनुसंधान करें, उसी का नाम है नाद अनुसंधान। क्या है? नाद अनुसंधान। तो नाद अनुसंधान में पांच अवस्थाएं होती हैं। एक सिद्धि का आरंभ है। सिद्धि क्या होती है? आसमान में उगना। बहुत बढ़िया, ये लोग यही सिद्धि चाहते हैं। जल में चलना, अग्नि को खाना, क्या यही सिद्धि है क्या? अरे भाई, ये ऋषि का नाम सिद्धि है तो ये जितने पक्षी हैं ना सब स्वयं सिद्ध है। यदि जल में चलने का नाम होए तो जल में कितने वो होते ना, कौन से झींगा टाइप कीड़ा होता है, वो जल के ऊपर ही चलता है। अरे मछली तो जल के भीतर चलती है, लेकिन वो एक कीड़ा होता है वो जल के एकदम क्या रहता है? ऊपर ही चलता है। देखा नहीं देखा कभी आपने? हाँ, जल के ऊपर एकदम चलता है। तो वो तो स्वयं क्या है? यदि अग्नि खाने का ही नाम सिद्धि है तो एक चकोर पक्षी होता है, कहते वो अंगारे खा जाता है। क्या खाता है? अंगारे ही खा जाता है, ऐसा बोलते हैं, भगवान जाने ऐसा बताते हैं, अंगारे ही खा जाते हैं। तो वो तो स्वयं क्या हो जाएगा? तो ऐसी सिद्धि चाहिए क्या आपको बताओ? त तब सिद्धि किसको बोलते हैं? बोलो भाई, अपने स्वरूप में स्थिर होने का नाम ही सबसे बड़ी सिद्धि है। ध्यान देना, ये सब सिद्धियां नहीं है, ये सब चीजें तो 10-5 पैसे का काम है। रामकृष्ण परमहंस नहीं कहा, मैंने 12 साल किसी ने कहा साधना किया, तो क्या साधना करके सिद्ध किया कि मैं नदी में चल के पार कर सकता हूं। तो कहा भाई 12 साल तूने व्यर्थ ही गंवा दिया, केवल 2 पैसे का काम किया है, हैं? क्योंकि नाव ही नदी में ही पार करना है तो क्या हो जाएगा, नाव में उस समय तो 2 पैसे या 10 पैसे दो, और आजकल मान 10 रुपए दो और क्या, 10 रुपए दो, 100 रुपए दो, और नाव से इस पार से 24 घंटे तू नाव पानी में तो रहेगा नहीं, रहेगा साल में कभी एक बार कहीं एक नदी को पार करने की आवश्यकता पड़ती है, वो भी उस नदी को पार करने के लिए तमाम साधन है, पुल से पार कर लूंगा, नदी से पार कर लूंगा, और फिर उस नदी को पार करने के लिए हमने सिद्धि प्राप्त कर ली, कितने साल तपस्या किया, तो 12 साल व्यर्थ गए गए बताओ, कोई उपयोगिता रही बताओ, आप खुद सोचो व्यर्थ ही चले गए। तो ऐसी सिद्धि से आपके मन को शांति मिलने वाली है ही नहीं, ऐसी सिद्धि तो 2 कौड़ी की सिद्धि है, सच बता रहा नहीं। हमने बड़े बड़े सिद्धों को देखा, हरि वहां देखते होंगे कुंभों में अग्नि ताप करते हैं, गर्मी के दिन में क्या करेंगे, अरे ये सब कुछ नहीं होता यार, अब ये शरीर ना जिस ढंग से इसको ढाल लो, ये शरीर उस ढंग से क्या हो जाएगा, ढल जाएगा, पक्का जान लेना। ऐसा नहीं कि मैं कपड़े उतार के ठंडी में रहता हूं बहुत बड़ी तपस्वी हो गया, सर्दी भी सहने की सामर्थ्य इस शरीर में आ जाती है, चमड़ा थोड़ा सा ना अपने आप मोटा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा मोटा। हम सही बताऊं, गांव में रहे हैं हम, गांव के बंदे हैं, गांव में लोगों के पास जूते नहीं होते थे, उस समय की बात बता रहा हूं, थोड़ा पहले इनसे पूछो, हैं? अब गांव में जो गर्मी पड़ती है, अब सड़कों पे जो धूल जमती है, उस पे धूल जमती है, गलियों में रेतों पे जो चलते हैं तो भूभूत मतलब क्या एकदम उबलता हुआ रहता है, अब गांव के लोग बिना जूता पहने क्या करते हैं, उस पे चलते रहते हैं, सड़कों पे भी हम अभी भी गांव में कभी जाते हैं तो लोग नंगे पांव क्या करते हैं, सड़क पे चलते हैं, खेत के कटाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग 10 कदम पांव में जाते हैं तब क्या हो जाते हैं, छाले पक जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, लेकिन हम वही हैं जो 25-30 साल पहले उस गर्म धूल में चलते थे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, अरे आज जरा सा गर्म थोड़ा सा हो गया तो हाय मेरा पांव क्या हुआ, तो क्या हुआ, हम सिद्ध नहीं पहले थे, बस शरीर क्या था, किसी भी वाह परिस्थिति की क्या हो जाता है, अनुकूल अथवा प्रतिकूल अपने आप बन जाता है। हाँ 2-4 दिन आपको प्रभाव पड़ेगा, 2-4 दिन के बाद शरीर अपने आप क्या करेगा, सहने की एक शक्ति बना लेगा, तो इसमें कोई सिद्ध नहीं हो गया। कई लोग आप लोगों की दृष्टि मोही होता है, अरे महाराज जी गंगा जी में, गुजराती लोग तो नाराज न होना, गंगा जी में ठंडे पानी से नहाते हो, ये तो बड़ी सिद्धि है नहीं बोलो, क्योंकि गुजरात के बंदे तो गर्मी में भी किस पानी से नहाते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, तो बताओ, सही बताओ, अब भी हम यहां न, अभी तक तो गर्म पानी नहीं चलाया, शायद नवंबर तक नहीं चलाऊंगा, नवंबर दिसंबर तक जब तक रहूंगा नहीं चलाऊंगा, अरे महाराज जी ठंडे पानी से कैसे नहा लेते हो, आप लोगों का आश्चर्य होता होगा, लेकिन हम ठंडे पानी से नहाएंगे ना तो हमें लगता है जैसे मैं नहा ही नहीं हूं, सही बता रहा हूं, एक आदत सी बन गई है, बाल भिगो के ना नहाऊं तो क्या लगता है, लगता मैंने नहा ही नहीं है, अरे आप लोगों को आदत बन गई एक हफ्ते में एक दिन बाल भिगोना है तो आपको नहीं लगता है, तो शरीर एक आदत बन जाती है, अन्यथा इस शरीर में ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई सिद्धि उद्धि नहीं है, तो शरीर का अपना एक स्वभाव अपने आप ढाल लेगा, लेकिन आपको तो यही सिद्धि लगती है, महाराज जी वो महाराज तो कहां रहते हैं, गंगोत्री में रहते हैं, इतनी सर्दी में भी रहते हैं, अरे उनको ले आ दो यहां, कहां बॉम्बे नहीं हुआ तमिलनाडु में, पागल हो जाएंगे। अरे सिद्ध व्यक्ति तो वह माना जाता है जो व्यक्ति जिस शांति से कहां रहे, गंगोत्री में रहे, उसी शांति से कहां रहे, तमिलनाडु में रहे, जिस शांति से पब्लिक के बीच में रहे, उसी शांति से कहां रहे, एकांत में भी रहे, जिस शांति से 56 प्रकार का भोग खावे उसी शांति से सुखी रोटी भी खावे, तो वह व्यक्ति क्या माना जाता है? सिद्ध माना जाता है। अब जान लेना कौन सा सिद्धि चाहते हो, अब आप जान लेना। मतलब अष्टावक्र गीता में आता है, वह व्यक्ति बहुत बड़े भीड़ में भी न भागने का प्रयास करे, न व्यक्ति किसी जंगल में जाने का प्रयास करे, जैसी भी परिस्थिति आवे उस परिस्थिति में उसका मन क्या हो जाए? शांत रहे, वही सबसे बड़ी क्या है? सिद्धि है। अब बता ये सिद्धि चाहिए वाली, वो सिद्धि चाहिए आपको है? लेकिन फिधान ना यहां इतनी फूलमाला नहीं मिलेंगी, ये पक्का जाना, जयकारी भी नहीं लगेगी, क्योंकि व्यक्ति सहज व्यक्ति को जो सहज रहता है उसको जयकारी नहीं मिलती, जान लेना, क्योंकि वो आपकी तरह खाता पीता उठता बैठता दिखता है। आपको तो अपने से कुछ क्या करना चाहिए, विशेष दिखे तो आप उसको क्या मानते हो? सिद्ध मान लेते हो, कुछ विशेष दिखे तो, चाहे विशेष त्याग में भी दिखे तो, अभी कोई बिना कपड़े हो जाए तो भी आप उसको क्या मान लोगे? सिद्ध मान लोगे। या खूब जेवर जराऊ पहन लेवे, आजकल वो टीवी में एक बार आ रहा, मैंने देखा नहीं, हरिद्वार में गोल्डन बाबा नाम चल रहा था, कोई बता रहा है ये महाराज ये कौन से बाबा हैं? हमने कहा भाई पता नहीं, हमने कहा हमने भी सुना था पायलट बाबा एक हैं, एक कंप्यूटर बाबा भी मैंने सुना है, एक कंप्यूटर बाबा एक पायलट बाबा, लेकिन एक गोल्डन बाबा हमें नहीं समझ में आया। तभी ब्रह्मचेतन जी आए थे, वो बता रहे थे कि उनका गोल्डन बाबा इसलिए नाम है कि सोने सोने किए वो सब पहने पड़े हुए, इसलिए उनका नाम क्या है। हम कहा भाई पता नहीं, तो हम तो हमेशा किसको देखते हैं? विशेष को देखते हैं, चाहे विशेष ऊपर होवे चाहे विशेष कहां होवे? नीचे होवे। ये विशेष का नाम ही जगत है, ध्यान रखना, विशेष का नाम ही क्या है? जगत है। असामान्य का नाम ही ब्रह्म है, अब जान लेना। आप सामान्य हो कि विशेष हो? लेकिन कहां सबको यहां विशेष बनने की फिक्र है। सामान्य कोई बनने नहीं चाहता, सब क्या चाहते हैं? हम कुछ न कुछ क्या बने? विशेष बने, वीआईपी बने, ऊपर उठे अथवा नीचे जाए। दोनों में ही संसार है, ध्यान देना। ऊपर का भी नाम संसार है और नीचे का भी नाम क्या है? संसार है। और जो एक सामान्य सत्ता है उसी का नाम क्या है? ब्रह्म है। तो जो सामान्य ध्वनि चल रही है, सामान्य ध्वनि एकदम जहां कोई विक्षेप है ही नहीं, वो यदि आपको सुनाई देना शुरू हो जाए तो सुनाई तभी देगी जब आपका मन स्वरूप चिंतन एकाग्र होगा, तो विषय चिंतन से हट करके जैसे मन एकाग्र शांत होगा तो आपको वह ध्वनि सुनाई देगी। देखो अभी भी शांत बैठ जाओ, पंखा उंखा न चलाओ, एसी चल रही चलो ठीक है, क्योंकि यहां की एसी की आवाज नहीं है ना, स्पीक वाली ना, यहां जिस एसी की आवाज है नहीं है। अभी देखो सामान्य ध्वनि, यहां एक ध्वनि चल रही है, तो जैसे मन एकाग्र होगा तब आपको धुन सुनाई दे जाएगी। ये सिद्धि का आरंभ है। सिद्धि का क्या है? स्थिरता क्या हो गई? अब वह ध्वनि लगातार सुनाई देवे, अभी टूट टूट जाती है तो लगातार सुनाई देवे तो आप समझना स्वरूप चिंतन में स्थिर हो गए हो। स्वरूप चिंतन क्या हो गए हो? स्थिर हो गए हो। इसके बाद तीसरी अवस्था आती विश्राम की। विश्राम की अवस्था मान क्या हुआ? अब मन विचार करना भी बंद कर देवे, सुनने का प्रयास करना भी क्या कर देवे? बंद कर देवे, एकदम आंख बंद करते ही क्या हो जाए? स्वरूप चिंतन तुरंत डूब जाओ। इसका नाम विश्राम। इसका नाम क्या है? विश्राम। चौथी अवस्था विश्वास। कभी किसी कारण बस मन बाहर गया भी तो तुरंत कहां आने का प्रयास करे? भीतर उसी में विश्वास करे, उसी में आने का प्रयास करे, उसका नाम क्या है? विश्वास। अब व्यवहार में भी वही अवस्था बनी रहे, उसका नाम वीर्य शुद्धि। ये साधना की क्या है? पांच स्तर हैं। स्तर कौन कौन? आरंभ, दूसरा स्थिति, तीसरा विश्राम, चौथा विश्वास, पांचवा वीर्य शुद्धि, वीर्य शुद्धि। ये पांच क्या हैं? उस साधना की क्या है? स्थितियां हैं। आरंभ माने आ गया, आरंभ माने क्या हुआ? जैसे मन एकाग्र होगा तो समझ एक स्वर एक शान, मतलब जैसे आप सामान्य रूप देखना शुरू कर दो, वस्त्र देखो तो क्या दिखाई देना शुरू कर देवे? सूत दिखना शुरू कर देवे, ये फल फूल पत्ती ये दिखाई देवे तो आपको वाह क्या गजब के पत्ते महाराज, कैसे कैसे लाल लाल पत्तियां हैं, कितना बढ़िया फूल खिला हुआ है नहीं, कितना बढ़िया सुगंधी आ रही है, बोलते नहीं बोलते आप लोग, वाह क्या सीनरी है। लेकिन आपको सब में क्या दिखे, मिट्टी दिखे, सब में क्या दिखे, मिट्टी दिखे। एक साधना की एक अवस्था है समझ लेना, व्यवहार में भी तो ऐसे सब में एक दिखना शुरू हो जाए। अनेक नाम रूप जीव भी देखो, पशु पक्षी कीट पतंगा सब में देखो, लेकिन सब में जीवत्व रूप से सबको क्या देखना, एक रूप देखना शुरू कर दो, तो समझना आप स्वरूप चिंतन की स्टार्टिंग शुरू हो गए हो, क्या हो गए हो, आरंभ कर दिए हो, एक रूप देखना शुरू कर दिया, इसका नाम है आरंभ। फिर क्या होगा, स्थिर कब हो जाओगे, कभी कभी सुंदरता दिख जाती है, क्या करें, सुंदर को सुंदर न बोले तो क्या बोले, लेकिन बार बार वहां से हट करके क्या हो जाए, अपने उसी रूप में आने का प्रयास हो जाए, तो उसका नाम क्या होगा, स्थिरता, उसका नाम क्या होगा, स्थिरता। अब तीसरी अवस्था का विश्राम, अब चिंतन करने का प्रयास ही न करें, देखते ही आपको वही दिखाई दे, जैसे सुनार है देखते ही उसको क्या दिखता है, उसको कुंडल उंडल नहीं दिखता है, अंगूठी फंगूठी कुछ नहीं दिखता है, वो तोड़ ताड़ के चाहे घोड़ा हो वो, चाहे गणेश हो चाहे चूहा हो, वो दोनों क्या देखेगा, और आप क्या देखोगे, ओम जय जगदीश हरे गणेश जी, जय महाराज जी, गणेश जी की जय हो, आप विशेष देख लोगे, लेकिन सुनार क्या देखेगा, बोलो भाई सुना ही देखेगा और क्या देखेगा यार बताओ, तो ये ज्यादा महत्व न आवे, ध्यान देना, जैसे अब आपके लिए एक विशेष महत्व हो जाएगा, देखो वेदांत ही आप लोग हो इसलिए आपके लिए गणपति का विशेष महत्व आ गया, इसके बाद आएगा कौन, नवरात्रि, तो नवरात्रि का विशेष महत्व, देवी की पूजा करो, कहीं देवी की पूजा न किए और शंकर जी की पूजा कर लिए तो देवी जी क्या हो जाएंगी, हैं, ये आप विशेष दे दिए, हमारी दृष्टि में तो किसी की भी पूजा कर रहे हो ना उसी की पूजा कर रहे हो, सच बता रहा, किसी की भी चाहे वो गणपति रूप में करो, चाहे देवी रूप में करो, चाहे किसके रूप में करो, शिव रूप में करो, सब किसकी, इन सब पूजाओं का एक लक्ष्य है कि जो मन कम से कम बाहर विषयों में भटक रहा है, वह मन विषयों से हट करके कहां लगे, परमात्म चिंतन में लगे, बहाना कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें इन पूजाओं से कोई विरोध नहीं आता। लेकिन आजकल कितना विरोध चल रहा है, तू साईं की न कर, तू इसकी कर, तू वो न कर, उसकी कर, जबकि हम क्या करते हैं, किसी कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय में कहीं से भी है, लेकिन कम से कम विषय विषयों से क्या करे, हटे और परमात्म चिंतन में मन को लगावे, और जो गलत काम है उस गलत कामों को न करो। हर व्यक्ति की साधना का क्या है, कौन सिखाता है शराब पियो, कौन सिखाता है कि क्या कहते हैं व्यभिचार करो, कौन सिखाता है गलत काम करो, वो कोई सिखाता है क्या, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, लेकिन अंततः मन को कहां जोड़ना है, बोलो भाई स्वरूप में ले जाना, तो आपका कभी किसी के साथ कोई विरोध रहेगा क्या, तो आपने क्या देख लिया सब में, एक सामान्य सत्ता को देखा, किसको देखा, सामान्य सत्ता को देख लिया, तो देखना शुरू कर दिया, तो समझ लेना आप तीसरी साधना की तीसरी स्थिति हो गए। चौथा है विश्वास, चौथा क्या है, विश्वास से माने क्या हुआ, बार बार उसी में जाने का प्रयास करना, श्रद्धा विश्वास, देखो अभी जगत के विषयों के प्रति विश्वास है, तो बार बार जब मौका मिलता है हम टीवी देखने चले जाते हैं, जब मौका मिलता है हम बाजार घूमने चले जाते हैं, जब मिलता है वही बताए ना नाचने का बहाना चाहिए है नहीं, चाहे कहां जाओ, चाहे गणेश जी के नाम पे नाच लो, चाहे देवी जी के नाम पे नाच लो, चाहे शादी के नाम पे नाच लो, चाहे किसी भी फंक्शन, हमें क्या चाहिए, लेकिन यहां बहाना चाहिए, अपने आप में बैठने का बहाना चाहिए, किसी भी रूप में हम कहां बैठे, अपने आप में बैठने का प्रयास करें, जल्दी जल्दी संसार का व्यवहार छोड़े और कहां बैठ जाएं, शांत अपने आप में बैठे, इसका नाम है क्या, विश्वास। चौथा कौन सा है, पांचवा वीर शुद्धि। अब जब उसमें आपकी निष्ठा बन गई ना, तो संसार का कोई भी काम करते रहोगे, इन काम करते हुए भी उस काम का विकार जो सुख दुख मान अपमान होगा वह नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी चित्त की वृत्ति कहां लगी हुई है, अपने स्वरूप में लगी हुई। जिसे एक अभिनेता का दो रूप होता है, एक उसका मूल रूप और दूसरा रूप कौन सा होता है, जो अभिनय कर रहा है। तो अभिनय करता हुआ भी वो अपने आप को कभी भूलता? भाई यदि अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में लड़की बन जाए तो क्या भूल के अपने आप को लड़की मान लेगा क्या? क्यों? वो लड़की जैसे व्यवहार कर रहा, मैं जाती हूं, खाती हूं, पीती हूं, बोलेगी या? लेकिन वो जानेगा मैं ये सब है। ऐसे आप व्यवहार करते हुए माता पिता भाई बंधु सब बनोगे, लेकिन अंदर से क्या रहोगे? असंग निर्लिप्त आत्मा। सब रूप किसके हैं? मेरे हैं। तो आप समझना सिद्ध हो गए हो। क्या हो गए हो? तो महाराज इस विषय की कोई गारंटी है क्या? मन एकाग्र हो जाएगा ऐसा अनुसंधान करने से? तो कहा सबसे बढ़िया साधना है, इस साधना में मन एकाग्र हुए बिना रह ही नहीं सकता है। कैसे? 146वां श्लोक, 146। भेरी मृदंग संखाद संखादी आहत नादे मनः क्षणम रमते किं पुनः अनाहते अस्मिन् मधु मधुरे अखंडिते स्वच्छे। कहते मनः, मेरा मन तो कहते भेरी, भेरी कौन सी होती है वाद्य यंत्र? आप लोग जानते होंगे, पता नहीं होता होगा, हम तो भाई संगीत के विषय में नहीं जानते ज्यादा, तो क्या बताए। भेरी कोई वाद्य यंत्र है, मृदंग हैं, शंख आदि माने और जो भी ले ले, ले। सितार, वायलिन और क्या तमूर, ओ क्या बोलते हैं, हाँ कुछ भी होवे, ये सब कैसे नाद हैं? आहत हैं, कनाहत हैं, सब की पिटाई होती है नहीं? सितार में भी तारों को क्या करते हो? छेड़ते हो। तार को छेड़ो ना तो कोई आवाज आएगी क्या? बोलो भाई। तो ये आहत नाद हैं। तो इन नादों में भी जब आपका मन क्या हो जाता है, बोलो भाई, एकदम शांत हो जाता है। बांसुरी बजावे तो मन क्या हो जाता है? शांत, आंख बंद करके क्या हो जाते हैं? तन्मय हो जाते हैं। बाहर की दुनिया का कोई ध्यान रहता नहीं। महाराज एक घंटे बड़ा मजा आ गया संगीत सुनकर के, होता नहीं होता है? और एक और देखना, इससे भले आप लोगों का आजकल तो आप लोग क्या करें, रजोगुणी है ना, इसलिए आजकल आपको पॉप संगीत ज्यादा अच्छा लगने लगा है। पॉप माने जो कान फाड़ने वाला संगीत हो गए, वही तो होता ना पॉप है। लेकिन जो सामान्य धीमी संगीत होती है, आप देखना आपका मन कहां अच्छा लगता है, धीमे में शांत रहता है या कान फाड़ने वाले में होता है? कान फाड़ने वाले संगीत में आप उछलना कूदना शुरू कर देते हो, ये सही है, देखना है। कान फाड़ने वाले संगीत में आप क्या करते हो? स्थिर रहना चाहो तो स्थिर रहते हो क्या? तो वो रजोगुण पैदा कर लेता है। और जो शांत ध्वनि है उसमें क्या करते हो? कोई बोले तो अरे भाई चुप रहो, आंख बंद करके क्या हो जाते हो? तन्मय हो जाते हो। तो जैसे जैसे रजोगुण बढ़ता है तो आपके शरीर में क्या हो जाती है? हलचल होती नहीं होती? आप देख लो, अजमा लो इस संगीत, संसार के भी संगीत में इसे देखो, इस जो वो होते हैं ना कितना शोरगुल करते हैं, किसमें? नाचने गाने वालों में या पॉप संगीतों में, क्या बोलते हैं समझ नहीं आता, संगीत इस मतलब है। लेकिन जो सामान्य सितार है, बांसुरी है या जो भी एक सामान्य वो है, उसमें मन क्या हो जाता है? और इस शांति से भी वो शांत है कौन, जो अनाहत है, तो उसमें पूरी समाधि लग जाएगी। जब आपकी इन ध्वनियों में समाहित चित्त हो जाता है, दिन दुनिया की खबर क्या हो जाती है? भूल जाती है। तो बताओ वो ध्वनि कौन सी ध्वनि? पुनः, किम पुनः, फिर उसके बारे में क्या कहना, कौन सी ध्वनि? अनाहते, जो ध्वनि क्या है? बिना आहत के है, बिना चोट। मधु मधुरे, मधु से भी क्या है? मधुर है। अखंडिते, यहां वाली ध्वनि में तो क्या हो जाता है बोलो भाई? खंडित है का खंडित है? ये दुनिया की ध्वनि खंडित है। मैंने देखा एक नाम यहां तो नहीं बोलना क्योंकि रिकॉर्ड सब करते हैं, लोग विरोध कर देंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक किसी व्यक्ति की साधना थी माइक चला करके, मैं भी गया उनके यहां गंगानगर में, आप लोग जानते हैं बड़े बड़े भारी महाराज हैं, ठीक है ना? तो माइक चला करके टेप चलता है, और टेप में क्या होता था? संगीत बजती है, असंगीत में लोग क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। बस हमें भी लगा क्या करें कैसे करें, सब ने यार थोड़ी देर बाद इत्तफाक था, तार हिल गया होगा या माइक चली गई हो, ओ लाइट चली गया होगा या वो क्या यमसील क्या हो गया, नीचे गिर जाता ना, हाँ नीचे गिर गया यमसील ना, कट आउट नीचे हो गया। अब बस उनका ध्यान मान क्या हो गया, एक किनारे वो सब माइक की ठीक करने में लग गए, कहां से आवाज आई ऊपर ठीक नहीं। हमका ऐसा ध्यान किस काम का बताओ, ये तो ध्यान आपका ऐसा ही है जैसे नाराज न होना, वो क्या करता है बंदर को नचाने वाला डमरू बजाता है, बंदर क्या करता है नाचता है, अथवा सांप के सामने क्या करता है बीन बजाता है, सांप नाचता है, तो हमें उसने क्या बना दिया, बंदर बना दिया और मदारी बन गया, ये मदारी तरह वाह संग। जो वो ध्वनि है कौन सी, अनाहत ध्वनि, उसमें कोई ब्रेकअप नहीं है, कोई इंटरवल, वो एक बार इसमें लग जाए ना तो व्यक्ति हमेशा कहां जाना चाहता है, उसी ध्वनि में ही खींचता चला जाता है। अनाहत डूब जाने में जो अखंडित है स्वच्छ है उसके विषय में फिर कहना ही क्या है, इसलिए हमें उस ध्वनि की तरफ जाना है। किस ध्वनि की तरफ है? जो अनाहत है। वो अनाहत कब सुनाई देगी, मैंने बता दिया कब सुनाई देगी, जैसे जैसे आपका मन संसार के विषयों से हटेगा, इसी को आगे बता रहे हैं। चित्तम विषय उपरमाद यथा 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 याति नैश्चल्यम बेंगलोरीव दीर्घतरस्तथा तथा श्रूयते नाद। विषय उपरमात, अलग अलग करोगे तो क्या, विषय उपरमात यथा, विषय उपरमात, विषय से चित्त क्या हो जाए उपरम उपराम हो जाए, विषय चिंतन से चित्त क्या हो जाए हट जाए। अब विषय चिंतन से चित्त कैसे हटे, ये बड़ा मुश्किल काम है। जिस जिस विषय में आपका चित्त जा रहा है उस विषय में थोड़ा दोष देख लो, क्या देख लो दोष देख लो, तो आपका मन स्वाभाव, लेकिन हाँ ध्यान देना इतना दोष न देखना कुछ विषय से द्वेष हो जाए, ये ध्यान देना। जिस जिस विषय में आपकी आसक्ति होवे उस विषय में क्या देखना, क्योंकि देखना हर वस्तु में कुछ अच्छाइयां हैं और हर वस्तु में क्या करना है कुछ बुराइयां हैं, तो हम उस वस्तु की तरफ जिसकी तरफ आसक्त हो रहे हैं हमारी दृष्टि कहां जाती है, अच्छाई में जाती है, इससे हम आसक्त होते हैं। यदि बुराई में जाए ना तो कभी आसक्त, यदि अच्छाई ज्यादा देख लिया तो हम आसक्त हो जाएंगे, तो उस अच्छाई में हम कुछ क्या देख ले में बुराई देख ले में, लेकिन हाँ ध्यान रहे इतनी बुराई न देख लेना कुछ से द्वेष हो जाए, इतनी बुराई देखना कुछ से चित्त क्या हो जाए उपराम हो जाए। जाने भी दो यारों, ये संसार है ऐसे ही है, ठीक है ना, द्वेष होगा तो भी चिंतन चलेगा, राग होगा तो भी चिंतन चलेगा, राग और द्वेष से एक बीज की स्थिति है जिसका नाम है वीतराग। क्या है वीतराग, माने राग भी बीत गया और क्या हुआ द्वेष भी बीत गया, एक बीज की अवस्था आ जाए तो इसी का नाम है उपराम। उपराम जानते ना, पगड़ी है वस्तु, पगड़ी रहने दो, और क्या, जो वस्तु जहां है जैसी है पगड़ी रहने दो, इसका नाम क्या है, तो चित्तम विषय उपरमात, चित्त आपका विषय से क्या हो जाए उपराम हो जाए। उपराम माने न अच्छा बनाने की चिंता न बुरा बनाने की चिंता, सच बता रहा। अभी हम या तो सबको अच्छा बनाना चाहते हैं, सब लोग अच्छे बन जाए, हैं, अथवा क्या बनाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आतंकवादी बनाना चाह रहा है, वो भी बुरी बनाना चाह रहा है, वो अपनी दृष्टि से अच्छा बनाना चाह रहा है, तो या तो हम इस पाले में रहते हैं अथवा हम क्या रहते हैं। हमें तो कभी कभी लगता है, कभी 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 हम ज्यादातर विचार करते हैं, देखो 84 लाख योनियां हैं, है नहीं, उसमें एक योनी कौन सी है, मनुष्य की है। अच्छा, मनुष्य को अपनी चिंता है कि औरों की चिंता है, सही बताना। यदि मनुष्य की चले तो घास का एक तिनका जमीन में होने न पावे। किसान का चले बता घास उगे क्या? हर गर्मी में खेत जोत देता है, निराई गुड़ाई करा करके खेत फेंक देता है, इन परमात्मा फिर भी घास उगाई देता है, क्योंकि उसको चिंता है ना, यदि घास पूरी तरह से समाप्त हो गई तो बेचारे पशु क्या रहेंगे। जंगल में कितनी लकड़ियां काटी जाती, फिर भी परमात्मा सिंचाई उचाई कोई करने जाता है क्या? फिर भी कुछ न कुछ पौधे हर साल कहीं न कहीं उगा ही देता है, जंगली जानवरों के लिए कुछ न कुछ रहने का। तो उस परमेश्वर को किसकी चिंता है? अरे भाई, हमें कभी कभी लगता है जिसने जगत को पैदा किया है उसने जगत को पालन करने का भी ठेका, तो हम काहे को चिंता करें। मैंने बता दूं, वो सुधारना भी जानता है किसी के अभिमान को। हमें तो जैसे इसे बड़े व्यक्ति अभिमानी देखते हैं, हम सोचते हैं मैं नहीं करूंगा इनको, मैं दंड नहीं दूंगा तो और कौन दंड देगा। इसलिए राम ने उदाहरण भी दे, राम ने भी रावण को मारा, कृष्ण को किसने मारा, तो हम भी जाकर के इनको सबक सिखाएं। अरे उस परमात्मा को सबक सिखाना होगा ना, तो एक डेंगू को भेजेंगे। किसको? एक डेंगू वाले को भेजेंगे, कहेगा जाके डंक मार दे, डंक मार देगा और सारी अकड़ क्या हो जाएगी, सब अकड़ ठिकाने में आ जाएगा, सब धन दौलत रुपया पैसा बल सब ठिकाने आ जाएगा। बताओ उसको दंड देने में, बोलो तो हम काहे को पाप के भागी बने, चाहे किसी को बुरा करना हो चाहे किसी को भला करना, सही बता रहा हूं। और हम सही बताऊं, ना भला भी करते हैं ना बुरा भी करते हैं, भी बता दूं मैंने, इसलिए मैं आपको भला वाला नहीं कर रहा हूं, सही बता रहा हूं। मैं केवल खाद पानी डाल रहा हूं आप में, क्या कर रहा हूं मैं, यहां से पांगी से, किसान तो कहां से डालता है, हाथ से, हम कहां से डाल रहे हैं, मुंह से खाद डाल रहा हूं, पानी डाल रहा हूं। आपके भीतर बीज होगा अच्छाई वाला तो अंकुर होकर के वृक्ष बन जाएगा, यदि बीज ही नहीं होगा, खेत बंजर ही है, कुछ बोए ही नहीं है, तो लाख हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? तो मैं आपको अच्छा नहीं बना रहा हूं, न आपको अच्छा मैं बना सकता हूं। अरे हम तो कभी कभी भगवान कृष्ण अपने बच्चों को अच्छा बना पाए क्या? नहीं बना पाए, तो कोई किसी को सुधार ही नहीं सकता है इस संसार में। हाँ, हम यदि आपके भीतर अच्छाई का बीज है तो खाद पानी हम अपना ही देखते हैं, हम तो और नहीं जानते। भाई देखो, मैं बज्र गांव में पैदा हुआ, ठीक है ना, आया पढ़ने के लिए। जिस व्यक्ति ने गांव से पहली बार शहर में देखा हो, जो व्यक्ति गांव की गलियां भूल जाता हो, शहर में तो डर लगता है कहां किस गली में भूल न जाऊं, कहां न चला जाऊं, लेकिन पढ़ना लिखना था लिखा था तो हम लोग उसमें गांव के स्कूल के पहले बच्चे थे जो इंजीनियर बने, सच बता रहा। प्रिंसिपल बोलता था इसी स्कूल से पढ़ा हुआ ये लड़के गए आज इंजीनियर बने, मतलब एक प्रतिष्ठा थी। जबकि गांव के इससे देहाती बाप अंगूठा टेक, मां अंगूठा टेक, लेकिन बताओ पढ़ना था तो पढ़े ही नहीं पढ़ा। बताओ हमारे माँ बाप की औकात क्या थी पढ़ाने की? अच्छा, इसके बाद महात्माओं में भी ऐसा नहीं कोई संस्कार था घरों में, मैं भी बताऊं। गांव का संस्कार तो शंकर जी पे जल चढ़ा दिया, पूजा कर दिया, सोमवार के दिन प्रसाद चढ़ा दिया, बस वो भी क्या गुड़ है और क्या चढ़ा देते हैं, बस ये लोग जानते होंगे। और क्या होता बताओ, कथा होता गांव कभी होती नहीं थी, अन्य कथा जानते भी कौन सी कथा होगी, सत्यनारायण की कथा हो गई, शंख बज गया पांच बार प्रसाद लेने के लिए चले जाओ, बस यही हमारी कथा हो गई गांव वाले, जो मैं बता रहा हूं जिस संस्कार से आए। लेकिन यदि बीज मौजूद था ताज महात्मा बन गया कि नहीं बन गया बताओ? यदि बीज ही ना होता तो बन सकता था क्या बताओ? तो बीज होगा तो हवा पानी खाद अपने आप को खींच लेगा अपने अनुसार की, उसको खाद पानी की आवश्यकता नहीं होगी, वो खाद पानी उसको अपने आप क्या हो जाएगा, जैसे ही मिलेगा वृक्ष बनकर अंकुरित हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। साधना समय मैं जानता ही नहीं था, ये तो इसे खोज आ रहा था कहीं से स्कूटर से, आवाज आई कुछ सत्संग सुनाई दे रहा, वहां पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद फिर क्या कहते हैं कि कथा उथा सुना, अच्छा लगा। फिर बड़े महाराज जी थे, उनसे कहा महाराज जी कुछ पढ़ना है पहले, बल्कि मैं गलत संगति में पड़ गया था एक आते, इससे अब नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो अच्छे बुरे संपर्क सबके जीवन में आते हैं। फिर यहाँ आया, फिर लघु पढ़ा, ये किया वो किया, उसमें मंजेश्वर जी भी आए थे नए नए, खुद टाइम देते थे, दो दो बजे रात तक हम लोग बढ़ते थे, बात करते थे, बहसबाजी होती थी। तो अब बताओ हमने साधना सदन का कोई भी खोला था क्या? यदि अंदर अंकुर है, बीज है, तो अपने आप पानी फल वो अपने आप क्या करेगा, खोज ही लेगा। तो क्या करना है, आप अपने भीतर संस्कार अच्छा बनाओ, खाद पानी गुरु तो अपने आप आपको मिलता जाएगा। तो क्या हो जाना, उपराम हो जाना। कहां से? संसार से। न अच्छे की वृत्ति न बुरे की वृत्ति, सच बता रहा हूं। न किसी को सुधारना है न किसी को, हाँ बस प्रयास करना है अपनी तरफ से जो कर्म होवे क्या करना। क्योंकि आपने यदि अच्छे करने की भावना रखा, अगर अच्छा व्यक्ति नहीं बना तो क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। तो दुखी हमें होना चाहिए कि उससे होना चाहिए, बोलो भाई। हमने तो अच्छा किया तो हमें तो क्या होना चाहिए, लेकिन हम सुबह 4 बजे जगते हैं, जगते ना, और एक आदमी 6 बजे तक सोता है तो दुखी कौन होता, सोने वाला जगने वाला? बताओ उल्टा काम करते हो। जगने वाले को सुखी होना चाहिए, वाह देखो मैं तो जग रहा हूं, लेकिन दुखी होता है कौन? जगने वाला दुखी होता, सोने वाला सुखी होता। बताओ आपने सुना ही होगा कहानी, ये शेख शादी जा रहे थे कहां, मक्का की यात्रा पे। तो उसमें मक्के की यात्रा में तो पैदल जाते थे ना, तो सब सो रहे थे। तो शेख शादी के पिता ने कहा, शादी नहीं शादी, हाँ शेख तो सरनेम है, वो क्या बोलते हैं उपाधि है, शादी जप करके नमाज पढ़ लिया, आपकी भाषा में जप करके पूजा पाठ कर लिया? तो कहा हाँ अब्बा जान, मैं जप करके नमाज पढ़ लिया लेकिन इतने लोग सो रहे हैं। तो कहा इससे अच्छा तू भी सोता रहता तो अच्छा था, कम से कम दोस्त तो नहीं देखता, दूसरे में तुम्हें बुराई दिख रही है। अरे तूने अच्छा काम किया तो तुम्हें क्या होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। और आपके अच्छे किए हुए काम को दूसरे ने फायदा नहीं उठाया तो दुखी किसको होना चाहिए, उस व्यक्ति को दुखी होना चाहिए। लेकिन जिसको दुखी होना चाहिए वो तो दुखी होता नहीं, दुखी कौन होता है? आप 10 का काम करते हो तो आपको क्या होना चाहिए, अरे जो आलसी बैठा हुआ है उसको क्या होना चाहिए? लेकिन जो आलसी है वो सुखी होता है, और जो काम कर रहा हो क्या होता है? बल्कि हमें तो गर्व होता है, साहब बताऊं कि मैंने 10 को खिलाने का भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया, मैं 10 की सेवा कर सकता हूं। भगवान हम आज यही इंसिस्ट कर रहे हैं, खाने वाला श्रेष्ठ है खिलाने वाला श्रेष्ठ है? हम कहते खिलाए भगवान और योग्यता दे, हम और 10 को खिलाएं, ठीक ना। लेकिन निंदा नहीं करना है, इतने भिखारी आ जाते हैं खाने के लिए आ जाते हैं, ये भी नहीं निंदा करना, ध्यान देना। अरे हमें योग्यता दिया हम उसका उपयोग करते हैं, अन्यथा मेरा कोई पेट भरा तो ठीक, न भरा तो दूसरी जगह खोज लेगा। हमने किसी की सारी जिंदगी पेट भरने का भी कोई संकल्प लिया नहीं, तो सारे संकल्पों से क्या हो जाओ, रहित तो हो जाओ। सच बता रहा हूं, चित्तम विषय उपरमाद, चित्त विषयों से क्या हो जाए। अरे सारी जिंदगी सारे संसार को पैदा करने वाले संसार को कहां ले जाना, कैसे बनाना है, सब ठेका ले लिया है। हमें तो लगता है ठेका ले लिया है, नहीं लगता आपको? पता नहीं लगे ना लगे, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है। आजाद होना था हम लोगों को, आजाद किसने कराया? देखा था यदि उस समय वो परिस्थितियां न आई होती, कौन सी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये अंग्रेज इतनी आसानी छोड़ने वाले थे क्या? उनकी दीपक को बुझाना था, परमात्मा ने ऐसी परिस्थितियां क्या कर दिया, खड़ी कर दिया, उनको छोड़ के जाना पड़ा। तो ये साहब किसकी इच्छा सो रहा है, मैं तो वही लोग अब भगवान ही मान, लेकिन इच्छा अनिच्छा से परे है, तो नेचर का एक काम है बढ़ाना घटाना, किसी समय सत्योग में पैदा हो जाता किसी समय जो, मतलब कि हमने बता ना किसी की भी इच्छा मान लो लेकिन अपने मन को क्या कर दो, हटा लो बस। भगवान की इच्छा मान लो, प्रकृति की इच्छा मान लो, गुरु की इच्छा मान लो, किसी की भी इच्छा मान लो, लेकिन अपने को क्या कर लो, किनारे कर लो, अपनी इच्छा अनिच्छा दोनों को क्या कर दो, छोड़ दो, तो शांति मिल जाएगी। तो चित्त जैसे जैसे यथा यथा, मतलब जिस प्रकार से चित्त विषयों से उपराम होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, यात नैश्चल्यम, तो चित्त क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, न चित्त यहां जाएगा न वहां जाएगा। अब जिसको सफाई का रोग है बताओ शांत बैठेगा क्या, उसको सामान तितर बितर देखेगा तो जब तक वो वहां हटाएगा नहीं ना तब तक है। आए आप सोचो कि आपने यहां रखा, लेकिन आपने जहां रखा क्या प्रॉपर जगह है क्या? आपकी दृष्टि में प्रॉपर होगा, लेकिन वहीं एक गिरीश भाई आएंगे कहेंगे नहीं यहां अच्छा नहीं लग रहा महाराज जी, इसको वहां रखो। तो आप जैसे कहोगे यही अच्छा है, इधर जो वस्तु जहां पड़ी है क्या है ठीक ही पड़ी होगी, उस व्यक्ति ने अपने हिसाब से रखा ही होगा या और क्या, ऐसा विचार करना तो आपका चित्त क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। और जैसे चित्त शांत होगा तो बेंगलोह की वो दीर्घ तरह नाद है, एक बेंगलू के समान, अभी जिस नाद को आप सुनने के लिए प्रयास करते थे अब वह नाद बेंगलू की तरह तीव्र है, क्या है दीर्घतर है, मतलब दीर्घतर माने तेज आवाज में आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगी। जिस नाद को भी सुनने का प्रयास कर रहे थे अब वह सुनाई देगी, लेकिन यहां अब ध्यान देना है ध्वनि को नहीं सुनना है, नहीं तो बाहर की ध्वनि भीतर की ध्वनि की तरह वो भी अनित्य हो जाएगी। उस ध्वनि के भीतर जो ज्योति है उस ध्वनि को भी पैदा करने वाली कोई न कोई क्या है शक्ति है, उस शक्ति की तरफ हमें ध्यान देना है। इसको बता रहे हैं 148वें श्लोक में पढ़ेंगे, नादा अभ्यंतवर्ती ज्योति ही यद क्या है यद वर्तते ही चिरम तत्र मनोलीनम चेत न पुनः संसार बंधाय। नाद अभ्यंतवर्ती, नाद के भी भीतर, आवाज के भी भीतर यत ज्योति वर्तते, जो ज्योति स्थित है, जो सारे जगत को सत्ता दे रहा है, अनाहत नाद को भी सत्ता, क्योंकि बिना सत्ता के कोई आवाज कोई सूखू भी होगी क्या? बोलो भाई, बिना किसी सत्ता के खुसुर फुसुर होगा क्या? खुसुर फुसुर होता ना, खुसुर फुसुर होवे तो लगता है कोई पीछे है, देखो तो कहां से खुसुर फुसुर हो रहा है, तो आवाज भी आ रही है तो आवाज भी तो किसी न किसी सत्ता के अधीन होगी नहीं होगी, तो उस आवाज के भीतर भी जो सत्ता देने वाला है, जो सब में अनुस्वित है, यदि उसमें मन आपका स्थिर हो जाए लीन हो जाए, मतलब नाम रूप जाति गुण क्रिया से हट करके वहां से दृष्टि हटा करके जो इनको देने वाली सत्ता परम ज्योति है, यदि मन उसमें लीन हो जाए तो फिर संसार के बंधन में वह व्यक्ति पकड़ता ही, इसलिए शब्द को भी नहीं पकड़ना है, शब्द के भीतर भी शब्द को सत्ता देने वाले किसको पकड़ना है, उस परम ब्रह्म को पकड़ना है। अब हमने शब्द बोला क्या बोला छोड़ दो, इन शब्द को जो बोलने वाला है, ठीक ना, जो बोलने वाला है उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लिया तो संसार बंधाए न संसार बंधाए, फिर वह संसार के बंधन में पकड़ता ही नहीं है। लेकिन यहां ध्यान देना, क्षण भर के लिए व्यवहार में भी मन उसमें लीन हो जाता है कभी कभी, लेकिन चिरम लंबे समय तक, अभी तक मन तो रोज ही लय होता है, कहां जब गहरी नींद में सोते हैं तो मन कहां लय हो जाता है, अपने स्वरूप में ही जाता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं जग जाते हैं, क्या बोला लंबे समय तक यदि मन उसमें लीन हो जाए तो संसार का बंधन उसका निश्चित ही क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब आगे की साधना में ही बता रहे हैं, एक श्लोक देख लेते हैं, परमानंद अनुभवात सुचिरम नाद अनुसंधानात श्रेष्ठा चित्तलयो अयम सत्सु अन्य लयेषु अनेकेषु, सत्सु अन्य लयेषु अनेकेषु, मतलब सत्सु अन्य लयेषु अनेकेषु, लय के दूसरे अनेक उपाय हैं, मन को लय करने के अनेक और कई उपाय हैं, नहीं उपाय हैं क्या क्या उपाय है आप लोग जानते ही जानते हो, हाँ? कोई श्वास, कोई नाक का अग्रभाग, कोई दीपक जला लेता है, कोई समुद्र के लहरों को गिनता है नहीं, और कोई यहां ध्यान करे, या कोई भगवान की मूर्ति का कोई आंख बिंदु, नक का नाखून, अनेक उपाय हैं किसके लिए, मन को लय करने के। लेकिन ये सारे उपाय किसी न किसी सीमा से क्या है, बंधे हुए हैं। इन सारे उपायों में से जो नाद अनुसंधान है वह उत्कृष्ट है, क्योंकि नाद अनुसंधान से व्यक्ति या नाद अनुसंधान के भीतर रहने वाली जो ज्योति है, यदि वहां मन लगाना है तो इस साधन को सबसे उत्कृष्ट बताया गया है, क्योंकि इस उत्कृष्ट साधन को प्राप्त करके व्यक्ति परमानंद अनुभवात है। क्या प्राप्त कर लेता है? परम आनंद का अनुभव प्राप्त कर लेता है। और परम आनंद का अनुभव प्राप्त करने के बाद बार बार उसी में ही रहने का प्रयास करता है। फिर संसार का विषय भोगना उसको क्या लगता है, फीका सा लगता है, फिर वहां जाने का यही कह रहे, जिसे कल मरने वाला हो उसको कहो चल माल पुआ खा, रस आएगा क्या, खा लेता है लेकिन संसार में भोग लेता है, शादी ब्याह में चला जाता है लेकिन क्या करता है उसमें, उसको ये नहीं देखता क्या माल बना है, कितनी सब्जियां थी, कितना लाइटिंग हुई है, किसी बहू है। अभी हम क्या देखते हैं, बोलो भाई कितनी सुंदर बहू है, कितना जेवर दिया, कितना गहना पहनी है, कितना सजावट हुई है, कितना खाना बना है, कितने करोड़ रुपए खर्चा किया है। अब वो सब, इन सब में दृष्टि उसकी जाती नहीं है, वहां जाते हुए भी अपनी अवधूत वृत्ति में रहता है। अवधूत जानते ना है, एकदम मस्त, उसको कोई फिक्र ही नहीं है क्या बना, क्या खाया, क्या दिया, क्या नहीं दिया, काली है कि गोरी है, हमने कोई ठेका ले लिया है क्या, मेरे बता दो। लेकिन हम, अरे क्या देख के शादी किया, अरे पैसे के लालच में शादी कर लिया होगा, मतलब न जाने क्या क्या कमेंट पास करना शुरू कर देते हैं। इन सारी सांसारिक चर्चाओं से वह क्या हो जाता है, बोलो भाई तो आपको कहां होना है, यही होना है, नहीं होना है, तब आज से सांसारिक चर्चाएं नहीं हो सकता। अब भी करते हो, अरे उसने इसे कपड़े पहने, ऐसा फैशन है, जिसको जो मुझे कर ले तो अपना क्या करना है, सही बता रहा हूं। यदि ज्ञान के रास्ते पाना है तो, समाज सुधारक बनना है तो अलग रास्ता हो, तो अपना, हमारे पास नहीं हो रास्ता, हमारे पास तो कौन सा रास्ता है, एकदम अवधूत बन जाओ। अवधूत माने बाल बनाए हैं तो, रखे हैं तो, झाड़े हैं तो, नहीं झाड़े हैं तो, जैसे भी व्यवस्था में हो क्या रहो, और क्या चाहे का चिंतन करना, अपने आप में रहो, अपने आप का ही चिंतन करो। टाइम हो रहा है इसलिए, संडे है, बारिश हो रही है इसलिए मैंने 5 मिनट ज्यादा ले लिया, इसलिए एक दो मिनट हो जा रहे हैं महाराज जी। लेकिन फिर भी मन नहीं लय हो रहा है, फिर भी मन बाहर भटक ही जा रहा है नहीं, इतना समझाते हैं तो भी चल ही जाता है। तो अब चर्चा कब करेंगे, कल का विषय मनोलय, आपका मन लय कैसे होवे, तो लय चाहिए नहीं चाहिए, तो इस पे चिंतन कब करेंगे, कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।